एक उचित, अच्छा और अपने बजट के अनुसार एक घर हो, वो ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। अगर एक अच्छा और उचित घर मिल जाए तो नई जगह में जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में सही इलाके में एक सही घर सही दाम पर ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अगर आप उनमें से है जो ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला घर किराए पर लेना चाहते हैं या फिर ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपने कानूनी हक और जिम्मेदारियां समझनी होगी। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स यानी कि ABS के अनुसार 46% लोग जो हाल ही ऑस्ट्रेलिया आकर बसे हैं, वो पहले के कुछ महीने अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के बाद अपने खुद के घर में बसना पसंद करते हैं और ये ज्यादातर किराए के मकान होते हैं। किराए के घर को लेकर हर राज्य में कानून अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक आपके यानी कि किराएदार की बात है, उनके कानूनी हक और जिम्मेदारियां पूरे देश में लगभग समान है। NSW के फेयर ट्रेडिंग कमिश्नर रॉड स्टो कहते हैं कि जब आप अपने घर की लीज की शुरुआत करें, तो ये जरूर चेक करें कि आपके रियल एस्टेट एजेंट या फिर आपके लैंडलॉर्ड ने आपको नए टेनेंट के लिए चेकलिस्ट दिया है या नहीं।
So that's a copy of the checklist, a copy of the lease or the tenancy agreement as it's known, and two copies of the premises condition report. So that's the report that says what condition the property is when you move in. You'll also be given a bond lodgement form for you to sign so that you can get that lodged with Fair Trading, and of course you'll get the keys to your new home.
बॉन्ड की रकम भरने के 2 महीनों के भीतर किराएदार को एक रेंटल बॉन्ड नंबर फेयर ट्रेडिंग द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन लीज पर साइन करने से पहले और बॉन्ड की रकम भरने से पहले किराएदार को कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। रॉड स्टो कहते हैं कि एक बार लीज पर साइन हो गई, फिर वो एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है।
So you need to read it through very thoroughly. One of the things you need to check, for instance, is how long will the lease be for? Will it be for 6 months? Will it be for 12 months? You need to know how the rent's to be paid, what intervals. You also need to make sure that you understand if there's repairs to be done, that the repairs will be done before you move in. Or if the landlord or the real estate agent is promising to make repairs, you need to make sure you get that in writing so that it's very clear what's been agreed to between the parties.
एक बार आप अपने किराए के घर में शिफ्ट हो जाए, उसके 7 दिन के भीतर आपको अपने घर की एक कंडीशन रिपोर्ट आपके एजेंट को देनी होगी। ये एक किराएदार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके घर में कुछ टूटा हुआ है या फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने एजेंट को इसके बारे में 7 दिन के भीतर बता दे। एक किराएदार होने के नाते आपके कुछ कानूनी हक भी बनते हैं। रॉड स्टो के मुताबिक आपका हक है कि अगर घर में कोई चीज को मरम्मत की जरूरत हो जिसके बिना रहना मुमकिन ही नहीं है, तो आप एजेंट को मरम्मत कराने के लिए कह सकते हैं। अगर आपके घर में बिजली का पॉइंट खराब हो गया हो या फिर खिड़की निकल गई हो या टूट गई हो, तो आप एजेंट को मरम्मत के लिए कह सकते हैं।
You are entitled, for instance, to have repairs undertaken. Similarly, you're entitled during that period of time to ask for additional things. So if you wanted to do some minor alterations to the property or if you wanted to keep a pet, you have to ask permission. It's also a right of the tenant. If the owner decides to sell the house, then there's a restriction on the number of times people can be shown through the house. You're also entitled to be given 60 days notice of any increase in the rents that you're paying to the landlord.
New South Wales राज्य की बात करें, तो अगर आपके किराए में बढ़ोतरी की गई है, तो आप उस पर आपत्ति उठा सकते हैं NSW के सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। लेकिन हाँ, ये करने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आपके इलाके में इतने ही किराए में इतनी ही सुविधाओं के साथ ऐसा ही घर उपलब्ध है। अगर आपके लैंडलॉर्ड मरम्मत को लेकर लापरवाह है, तो आप इस मुद्दे को भी कोर्ट में उठा सकते हैं। अगर लैंडलॉर्ड के हक की बात करें, तो किराए न भरने वालों को 14 दिन की नोटिस देकर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप पर नाइंसाफी हो रही है तो आप उसे कोर्ट में ललकार सकते हैं। ये NSW के फेयर ट्रेडिंग कमिश्नर रॉड स्टोव कहते हैं।
You need to lodge a application with the tribunal, and the tribunal will then determine whether or not you are able to make up the money that hasn't been paid. Usually, if you can make up the amount of money that you owe, the tenancy can continue on. But if you frequently get behind with your rent, then it's likely that the tribunal will agree to your tenancy being terminated. Another reason for termination might be that the owner wants to sell the property, and in those circumstances, they've got to give you 90 days notice that they intend doing that. And again, if you so wish, you can also dispute that at the tribunal.
Rod Stowe के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हर बात, हर मुद्दे को और हर समस्या को लिखित रूप से रियल एस्टेट एजेंट या फिर लैंडलॉर्ड को प्रदान करे, ताकि जब भी कोई डिस्प्यूट खड़ा हो तो बात साफ हो सके।
Because if there is a dispute at some stage or another, it's much easier to work those things out. So make sure you put things in writing, whether it's an email or a letter. Make sure you pay your rent. Even if there's a dispute or a problem, continue to pay your rent during that period of time and then try to work out the problem in some other way. And also, you know, make sure you get the permission of the landlord for any additional people you want to stay in the house or any alterations you want to make.
जब भी प्राइवेट घर को किराए पर लेने की बात आती है, तब रेफ्यूजी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ये पाया कि ऑस्ट्रेलिया में बसे नए लोग अक्सर भेदभाव के शिकार होते हैं और उनका शोषण होता है। कई नए रहवासियों को बॉन्ड की रकम वापस हासिल करने में भी अड़चनें आती है और वो लोग अक्सर टेनेंसी ट्रिब्यूनल्स में जाने से हिचकिचाते हैं। इसीलिए किराए के मकानों के बारे में और जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए NSW के फेयर ट्रेडिंग कमीशन ने एक वीडियो फिल्म बनाई है। नाम दिया है रेंटिंग अ होम, अ टेनेंट्स गाइड टू राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कई भाषाओं में उपलब्ध है। NSW के फेयर ट्रेडिंग कमिश्नर रॉड ये भी मानते हैं कि किराएदारों के हक की सुरक्षा के लिए अलग अलग समुदायों से मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है।
We particularly recognise how difficult it is for new arrivals, because one of the very first things you need to do is to find somewhere to live, and we also recognise that in their countries of origin they may not have the same laws and requirements, so we're anxious to make sure we can assist those communities better understand their responsibilities and their rights.
NSW की बात करें तो Tenants Advice और Advocacy Services आपको बिल्कुल मुफ्त अनुवाद और किरायों के घर से लगती जानकारी की सेवा भी प्रदान करते हैं। उनके मुताबिक किराएदारों को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वो कुछ टिप्स भी देते हैं, जैसे कि अपने एजेंट के साथ की हर बातचीत और लेन देन को लिखित रूप में रखें। आपके टेनेंसी अग्रीमेंट, कंडीशन रिपोर्ट, किराए की रिसीट, बॉन्ड की रकम की रिसीप्ट, आपके बीच का संचार, वो फिर पत्र हो या ईमेल, इन सभी की एक कॉपी जरूर रखें। कोई भी कोरे कागज पर या फिर ऐसे कोई दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करे जो आपको समझ में न आए। अगर आपको ट्रिब्यूनल से कोई नोटिस आती है तो आप वहाँ ट्रिब्यूनल में जरूर हाजिर रहे। फिर चाहे आपके लैंडलॉर्ड हाजिर न रहने की सलाह दे रहे हो तो भी। और ये भी याद रखें कि अगर आप किराया देना बंद करते हैं तो आपको वो घर से निकाला जा सकता है। आपके हक और आपकी जिम्मेदारियां बयां करती बुकलेट्स हर राज्य और हर क्षेत्र में उपलब्ध है, वो भी विभिन्न भाषाओं में। NSW के लिए आप fairtrading.nsw.gov.au चेक कर सकते हैं। विक्टोरिया के लिए आप consumer.wic.gov.au चेक कर सकते हैं।